नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 14। इस अध्याय का नाम है देवताओं तथा असुर द्वारा संधि की घोषणा। सह त्वं विधस्त्वं अखिल लोकपाला वयम् यत अर्थाः तव पादमूलं समागता ते बहिर् किं वा बहिर् अंत आत्मना किं वा विज्ञापम् अशेष साक्षिणः। संतम वितस्तम अखिलोकपाला वयम् यतस्तस्तु पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्त आत्मनः किंवा न विज्ञापमशेष साक्षिणः। स्वतं वितस्ताखिल लोकपाला वयम् यतस्तस्तु पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्त आत्मनः किंवा न विज्ञापमशेष साक्षिणः। स्वतं वितस्ताखिल लोकपाला वयम् यतस्तस्तु पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्त आत्मनः किंवा न विज्ञापमशेष समाह। वह त्वं आप विधस्तः कृपया जो आवश्यक हो करें। अखिल लोकपाला देवता इस ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों के निर्देशक। वयम हम सभी यत जो अर्था प्रयोजन तव आपके पादमूलम चरण कमलों पर समागता हम आए हैं ते आपको बहिर अंत आत्मना हे सबके परमात्मा हे वाय तथा अंत के सतत साक्षी। किम क्या वा अथवा अन्न विज्ञापन आपको सूचित करते हैं। अशेष साक्षिण हर वस्तु की साक्षी तथा ज्ञाता। अनुवाद उत्तर पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की। ध्यान से सुनेगा। हे भगवान हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निदेशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है अतः आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है क्षेत्रज्ञम चाप्रमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जीवात्माएं अपने अपने शरीर की स्वामी हैं किंतु भगवान सभी शरीरों के स्वामी हैं। क्योंकि वे हर एक के शरीर के साक्षी हैं अतः उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए अतः हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देशन में निष्ठापूर्वक भक्ति करें। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति कृपा पूर्वक कृष्ण करेंगे। कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में हमें कृष्ण तथा गुरु के आदेशों मात्र को पूरा करना होता है तब हमारी सारी आवश्यकताएं हमारे न मांगने पर भी कृष्ण द्वारा पूरी हो जाएंगी। और सुंदर ब्रह्मा जी समझा रहे ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन श्लाक्य चर्चुरुन्मुक्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है और ये जो कथा है मुझे लगता है सतयुग की कथा है। रे तो समुद्र मंथन कब हुआ था? सतयुग में हुआ था, त्रेतायुग में हुआ था, द्वापर में भी नहीं हुआ था, कलयुग में तो संभावना ही नहीं। तो ये प्रसंग सतयुग का है। अब देखिए सतयुग में लोग सब यही समझते हैं सतयुग बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, लेकिन एक तरह से अच्छा नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई अगर होती थी तो सतयुग में हुई। बड़े बड़े राक्षस सतयुग प्रकट हुए, इसीलिए भगवान को भी सतयुग में कई बार प्रकट होना पड़ा विभिन्न विभिन्न अवतारों में। अभी नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं, ये भी सतयुग की लीला है। इससे पता चला सतयुग में जो दानव होते थे कितने बलवान आते थे, और देवता लोग हमेशा परेशान रहते थे। अब आप सोच सकते हैं जब देवता लोग परेशान थे तो पृथ्वी पर मनुष्यों की क्या हालत रहेगी। सच है कि नहीं सच? तो सतयुग अच्छा है, कलयुग अच्छा है। कलयुग में देवता भी निश्चिंत होकर अपना अपना काम में लगे हुए है ना, दानों का कुछ पता ही नहीं है कहाँ है ना। अब पृथ्वी पर साधु संत हम लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, कोई ज्यादा खलम नहीं हो रही। सच है कि नहीं सच? इसलिए भगवान भी जो है इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिए, कहा कि नाम से इनका उद्धार कर देना है। ये सच्चाई है, कलयुग अच्छा है। कलयुग में हम भगवान का नाम लेकर के अपना भी उद्धार कर सकते हैं, दूसरों का भगवत धाम पहुंचा सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, इसलिए कलयुग अच्छा है। सतयुग का तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि जब देवता और दानव आपस में बहुत लड़ रहे थे तो भगवान बीच में आ गए। उन्होंने एक समझौता किया कि भाई आप लोग क्या करो, समुद्र मंथन करो और उससे जो निकले आप लोग बांट लो आपस में, क्यों लड़ रहे हैं। तो टेम्परेरी संधि थी, तो उसके बाद फिर लड़ते ही लोग, ऐसा इनकी आदत थी। तो भगवान के सामने ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जीव है और सृष्टि करता वही है। वो भगवान को क्या कर रहे हैं कि हम विभिन्न देवता, अर्थात हम भी क्या हैं, देवता हैं, बाकी हमारे साथ जितने आए हैं शंकर जी वगैरह ये भी सब क्या हैं, देवता हैं, ये सब भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप को सब करें सब जब विभिन्न देवताएं हैं, लेकिन आज कलयुग में क्या गया है, क्या हो गया है, जिसको चाहते हैं उसी को भगवान मान लेते हैं कि तुम भी भगवान हम भी भगवान सब भगवान। यहाँ तक तो कुछ साधु संत ऐसे हैं वो भी अपने आप को भगवान या भगवान को अवतार कहने में संकोच नहीं करते। ये सच है कि नहीं सच है? तो जब देवता लोग अपने मुख से अपने आप देवता कर रहे हैं तो हम जबरदस्ती क्यों भगवान मानेंगे? ऐसा क्या कलयुग में हो रहा है? जबरदस्ती कहते हैं साईं बाबा ए भगवान, लड़ रहे हैं अपन साधु संत लोग है ना, क्योंकि साईं बाबा भगवान नहीं, वो तो एक सच्चे फकीर थे जो बोल देते थे वो हो जाता थे। तो हिंदुस्तान बड़ा विचित्र देश है, यहाँ किसी को भगवान मान लेते हैं। सही बात, बड़ा विचित्र देश है। यहाँ एक चिकना पत्थर में सिंदूर डाल दीजिए रात को अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे, अब फोड़ करके धागा बांध दो चार परिक्रमा सुबह तक करने लगे, लोग वहां लाइन लगा दी परिक्रमा करने की, कोई नहीं सोचे क्या हो रहा, क्या ऐसा कुछ नहीं सोचे, कोई देवी प्रकट हो गया। अपना देश ऐसा है, हमें इन सब चीजों से क्या रहना चाहिए, सावधान। हम उन्हीं को भगवान मानेंगे, देवता मानेंगे, देवी मानेंगे, जिनका शास्त्र में चर्चा होती है। शास्त्रों में अगर किसी देवी देवता का नाम नहीं है तो हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा देवी देवता हम खुद नहीं बना सकते, जैसा कि आजकल हो रहा है। जैसे आप बंबई में जाइए, एक नई माता जी का मंदिर होंगे, उनका जानते ना क्या, जरी मरी माता, उनका नाम है जरी मरी माता मंदिर, जरी मरी, जरी भी मरी भी, बिल्कुल मेन रोड पर मंदिर बना दिया। तो मैं जब बंबई जा रहा था रामनवमी पे, मैं गया था वहां पर, तो मैं बड़ा ताजुब किया, जरी मरी माता, छुई मुई माता, क्या छूते मुई मुई हो जाए, क्या माता है। लेकिन हिंदुस्तान बड़ा विचित्र देश, हमारे यहाँ के लोग किसको भी क्या करते कह नहीं सकते। तो हम भक्तों को ऐसे जाना चाहिए कि दुनिया अज्ञान में रहे, हमें इन अज्ञानता की लहर में बहना नहीं है, हमें शास्त्र के हिसाब से रिस्पेक्ट देना है, मानना है। ऐसे होगा तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि हम विभिन्न देवता हैं, अर्थात हम भी देवता हैं, बाकी जितने भी अभी क्या हैं सब देवता हैं। इस ब्रह्मांड के निदेशक हैं, डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। भगवान ने क्या किया, एक जल के देवता हो गए, वरुण देवता है ना, ये अग्नि के देवता है ना, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया। ये यमराज जो मृत्यु को दंड देने वाला, यमराज का डिपार्टमेंट दे दिया है ना, इंद्र को दे दिया स्वर्ग के राजा, सब डायरेक्टर्स हैं, वही प्रभु के निदेशक। आप चरणों को मैं निकट आए हैं, तो जिस प्रयोजन से आए हैं कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं, खुद बोल रहे हैं कि आप सब जानते हैं, और वास्तव में यही सच है। भगवान गीता में अर्जुन को ये बात समझाया कि अर्जुन हमारे में तुम्हारे में यही बड़ा अंतर है कि तुम अपने मन की बात जानते हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तुम्हें पता है, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं है। लेकिन हमें तुम्हारे मन की बात पता चला है, जितने भी मनुष्य हैं सब हृदय में क्या चल रहा है मैं उनका भी जानता हूं, क्योंकि मैं परमात्मा के रूप में सब हृदय में विराजमान हूं, तो सबके मन की बात मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तो तुम्हारे में हमारे में यही अंतर। तो तथा कथित जो अपने आप को भगवान कहते हैं, आप समझिए उनको हम कैसे भगवान माने, वो सबकी बात नहीं जान सकते। भगवान ये तो वही ब्रह्मा जी करें कि आप अंदर की बात जानते हैं और बाहर की भी बात जानते हैं, आप सर्व साक्षी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, हर वस्तु के साक्षी आप हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। अतः आपको किसी बात के लिए पुनर्सूचित करना व्यर्थ है, अर्थात हमारे मन में क्या है भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, राह दिखाते हैं, भगवान को सब मालूम है। कहते ने कहा थे, दाई से क्या पेट छिपाई, भगवान को सब पता होता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं कि आपको सब पता है कि हम आपके सामने किस लिए आए हैं। ऐ ब्रह्मा जी लोग और शंकर जी, ये लोग कई बार ऐसा किए हैं, और भगवान डांटे भी इनको क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे वरदान देते रहते हो, अब मुसीबत में खुद फंस जाते हो, है ना, पूरे समाज को मुसीबत डाल देते हो, है ना, अब बाद में फिर उनको आना पड़ता है। तो भगवान ने डांटा भी इन लोगों को है कि जब वरदान देते समय थोड़ा सोचे समझिए, है ना। ये देवताओं की हालत है, इसीलिए हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, भगवान की, लेकिन सम्मान हमें सबका करना चाहिए, सब देवताओं का सम्मान करना चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, जैसे आज जो है सीता नवमी है, अब हम इसी को यहीं से ट्विस्ट कर देंगे स्टोरी, है ना, क्योंकि हनुमान जी आगे पीछे, और हनुमान जी हमारे शिरोमणि हैं, हम लोग दास लिखते हैं अपने नाम कहकर, और दास शिरोमणि कौन है, हनुमान जी, हनुमान जी क्या है, दास शिरोमणि। तो हनुमान जी के भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी से क्या मांगिए कि हनुमान जी जिस तरह से आप प्रभु का नाम लेकर के, है ना, आप एक महान भक्त बन गए हैं, तो आप मुझे भक्ति दीजिए कि मेरा भी रुचि भगवान का नाम लेने में आए और मैं भी आपकी तरफ भगवान की सेवा कर सकूं, ये मांगना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जब जाए तो क्या मांगे, भक्ति मांगी। ये नहीं कि जितना लड्डू नहीं जितना बूंदी नहीं उतनी समस्या लेके खड़े हो गए हनुमान जी, समस्याओं की लिस्ट जो है निकाल दिया है ना, तुमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि आप जो किस भौतिक चीजें मांगते हैं वो तो फंसने वाली बात है कि भौतिक चीजों से आप सुखी नहीं हो सकते, आनंद में नहीं रह सकते। एकमात्र भक्ति है जिसमें आनंद ले सकते हैं। हनुमान जी बहुत चतुराई से वैष्णव की सेवा की, भक्तों की सेवा की, उनके झूठन खाए, भक्त बन गए, भगवान का नाम इस तरह से लेना शुरू कर दिया कि अमर हो। और सबसे अच्छा कथा वही सुनते हैं, हनुमान जी कहीं भी भगवान की कथा होती है वो श्रवण करने जाते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी भगवान की कथा हो कक्षा चले तो हमें जाकर क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जो सुनेगा नहीं वो क्या भक्ति करेगा। कभी कभी हम देखते हैं कथा चल रही होती है और लोग आके खड़े होते हैं दर्शन करते रहते हैं भगवान का, उनकी कथा में रुचि नहीं होती। जबकि कथा में ही रुचि होनी चाहिए कि जब तक भगवान के बारे में आप श्रवण नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, उनको जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो देखेंगे क्या, उनका दर्शन कैसे करेंगे। प्रभुपासना कर, इसीलिए ये जो कक्षा होती है हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं की है हमारे लिए की है। अगर भगवान ने लीलाएं नहीं की होती तो हम किसकी कथा सुनते हैं। तो बड़े बड़े भागवत सत्ता राम कथा भाव कथा चल रही है, लोग भजन गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं कि भगवान ने लीलाएं की। अगर मान लो भगवान नहीं आए होते इस पृथ्वी पर और कोई लीला नहीं की होती तो आप किसकी कथा सुनते, किसका गीत बना करके गाते हैं। तो भगवान इस धराधाम पे आते हैं सिर्फ हम लोग को आनंद देने के लिए, और लीलाएं जो करते हैं कि यही लीलाएं हम क्या करेंगे, श्रवण करेंगे, गुनगाएंगे, हमारा क्या होगा, उद्धार होगा, कल्याण। हमारे कल्याण के लिए भगवान हर युग में आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, और उसी का गुणगान करके श्रवण करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस एकदम क्लियर है कि देवता में, देवी में और भगवान में क्या है, अंतर है। सब एक जैसे नहीं है। एक गलत जो प्रचार किया जा रहा है अज्ञानियों के द्वारा, हम भक्तों को इसे क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ये जानना चाहिए। भगवान भगवान होते हैं, देवता देवता होते हैं, देवियां देवी होती हैं, भूत भूत होते हैं, प्रेत प्रेत होते हैं, पिशाच पिशाच होते हैं, गंधर्व गंधर्व होते हैं, किन्नर किन्नर होते हैं। तो सबका लोक है, सबका इस संसार में रहने का हक है, सब रह रहे हैं। पशु पशु होता है, पक्षी पक्षी होता है, कीड़ा कीड़ा होता है। अब आप अर्थात सब का इस तरह से होता है, तो सबका निवास भी भगवान इसी तरह से किया है। तो भगवान चूंकि सबसे बड़े महान है तो सबसे ऊपर भगवान ही रहते हैं। गोलोक वैकुंठ लोक में भगवान रहते हैं, फिर उसके नीचे लोग शुरू हो जाते हैं देवताओं के, इस तरह से फिर हम लोग पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। और जो राक्षस लोग होते हैं दैत्य लोग पाताल के लिए चले जाते हैं। तो ऊपर से रहने की फैसिलिटी शुरू होती है और नीचे तक चली जाती है, ऐसी स्थिति है। इस बात को सब जानते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। कभी नहीं कहता भगवान नीचे रहते, कोई कहता है कि भगवान ऊपर ही रहते हैं, सबसे ऊपर भगवान रहते हैं। उसके पार जितने देवलोक हैं, देवताओं का अपना स्वर्ग लोक फिर नर्क लोक, यानी इस तरह से सारी स्थिति है। तो हम आप भक्तों से ये अनुरोध है कि आप प्रभुपाद जी संस्था से जुड़े हैं तो इतना निश्चित करिए कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, और अंतर समझे कि देवता में भगवान में ये सब क्या है, अंतर है। इस बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ ब्रह्मा जी खुद कर रहे हैं कि हम तो सब देवता हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के देवता हम सब आपके पास आए हुए हैं। हे प्रभु आप सब जानते हैं हम लोग किस लिए आए हैं, आप उसी इच्छा पूरी करो। जब देवता लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लड़ रहे हैं तो हम देवताओं के पीछे क्या क्यों पड़े हैं कि मेरी इच्छा पूरी करे, वो तो खुद अपनी इच्छा पूरी करने के भगवान पास जाता है। आप सुना क्या समझते, इसीलिए हमें डायरेक्ट भगवान की शरण में क्या करना चाहिए, जाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और क्या लेके आए, हरिनाम लेकर के आए। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम श्री कृष्ण, वैकुंठ लोक से ये हरिनाम लेकर के आए और कलयुग में भगवान नाम के में उतार लिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको बांटा, प्रभुपाद जी ने इसी हरिनाम को लेकर पूरे दुनिया में बांटा और आज हम लोग बांट रहे हैं। एक विधि और परंपरा है, बिल्कुल प्रामाणिक परंपरा के थ्रू ये ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है और जो इसको अपना रहा है उसको आनंद आ रहा है। चाहे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आनंद आ रहा है, तभी तो आप लोग माला गले में लटकाए हैं। आनंद आ रहा है, नहीं आनंद आ रहा है, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बोलिए। माता जी से मुस्कुराते ही बोलते रहे, बोलना चाहिए कि यस हमको अच्छा लग रहा है। आप जब करने से कितना आनंद आता है, भगवान का दर्शन करने से कितना आनंद आता है, भगवान की कथा सुनने से कितना आनंद आता है, तो प्रभुपाद जी इसी आनंद को लेकर के जब अमेरिका गए, इस काम को जानते 50 साल पूरे हो रहे हैं, कितने 50 साल पूरे, 50 साल में ये जो पूरे दुनिया में फैल गया, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इस काम न हो, भक्त लोग प्रचार प्रसार नहीं कर, पूरी दुनिया कोने कोने में प्रचार। तो एक किसकी कृपा से, प्रभुपाद जी की। तो बाहर के लोग परेशान हैं क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी है, राइट, इतना हाई टेक्नोलॉजी है, डॉलर कितना हैवी आप लोग समझते हैं, उनका एक डॉलर हमारे 60 रुपए को बार होता है, कितना हैवी होता है डॉलर उनका, राइट, हमेशा रुपया कमजोर होते जाता है, ये स्थिति है अपने यहाँ की। ऐसी जगह में प्रभुपाद जी सफल हुए, क्यों, क्योंकि लोग परेशान थे, लोग नशा कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, सेक्स हर चीज में थे, लेकिन फिर भी शांति के लिए भूखे थे, परेशान थे, क्योंकि इन भौतिक चीजों से शांति आ नहीं सकती। अगर डॉलर से या पाउंड से शांति खरीदी जाती तो सब शांति में रहते, सब आनंद रहते, ऐसा नहीं है। तब प्रभुपाद जी हरिनाम लेकर के गए, आप देखा कितने बड़े बड़े लोग इस काम से जुड़े, यूथ यंग मैन जुड़ करके उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। और वही यंग जो लोग जुड़े थे 16 साल के, 18 साल के, 19 साल के, अब बेचारे इस काम में ही सेवा करते करते बूढ़े हो रहे हैं महाराज लोग। अब नई जनरेशन हम लोग तैयार कर दिया उन्होंने, हमारा क्या कर्तव्य है कि दुगुना उत्साह से इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, फिर हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर वो जो जनरेशन आएगी वो प्रचार करना शुरू कर दी। इस काम में हमेशा लोग युवा बने रहेंगे, इस प्रभुपाद ने संस्था ऐसी बनाई है, क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं तो युवा जुड़ती है, और जब तक हम बूढ़े हो जाने के कारण तब तुम्हारी युवा टीम आ जाती है ना, सुनिए। तो इसलिए हमेशा इस काम में युवा ही दिखते हैं, हमारी संस्था जवानी दिखती है, क्योंकि हम जवानों के बीच में क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। बूढ़ों के बीच प्रचार करने से कोई फायदा नहीं, कि बूढ़े लोग सठिया जाते सुनते नहीं, वो बोलेंगे अरे हमारे जैसा बेटा है ना, हम तो नाती पोता हो गए, हमको शिक्षा दे रहा है, माला जप कर। तो बूढ़ों के पास समझाने से क्या जरूरत है, यंग में प्रचार को, यूथ, क्योंकि उसको हम चेंज कर सकते हैं, उनके दिमाग को हम सेट कर सकते हैं, राइट, सच है कि नहीं सच। अंग्रेजों ने कह क्यों पूरे इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैला दी, जानते हैं टेक्निक, वो लोग बहुत एडवांस, उनके पास दिमाग होता है, जान ले से ना। इंडिया में पहली बार अंग्रेज आए तो यहाँ का नवाबी देख करके वो समझ गए कि ये सब काम चोर, कि जो व्यक्ति अपने लिए खाना नहीं बना सकता, अपना जूता नहीं पहन सकता, अपना कपड़ा नहीं साफ कर सकता है ना, क्योंकि पहले बड़े बड़े नवाब हुआ करते थे, राजा महाराजा, हजारों नौकर, जूता पहनाने के नौकर, मोजा पहनाने के नौकर है ना, हर चीज, कहे कि इस देश को गुलाम करना बहुत आसान है, कि यहाँ सब काम चोर, माने अपना काम खुद नहीं करना चाहते है ना। अब बड़े बड़े नवाब होते थे वो पान खाते थे है ना, चांदी के बड़े बड़े कटोरा रखते थे, और दो नौकर रखते, एक इस बाजू एक बाजू, कि नवाब है किधर थूक के पता नहीं उल्की करता लेफ्ट राइट में, तो राइट तो पीक दाल लेकर इतनी लबावे थी एंड अब इंडिया में थे, इसलिए इंडिया गुलाम है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत समझदार थे। और अभी भी आप देखेंगे, है ना, अभी भी आप देखेंगे किसी भी फॉरनर डिओटिक देखिए, जो हम विदेशी बताते हैं, अपना सामान खुद करते हैं, उनको आदत नहीं, वो खुद अपना काम करते हैं, अपना सामान रखेंगे, बच्चे भी ऐसे लटका लेंगे बैग जैसे बना करके, पीछे कंधे पर सामान लटका कर चल देते हैं अकेले से, है ना। हर जगह कहीं भी आप जाए, अमेरिका में खुद गाड़ी ड्राइव करेंगे, खुद सारा काम खुद अंग्रेज करता है, इसीलिए सफल। हमारे हाथ काम हम लोग करने नहीं चाहते, लोग नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढता है, काम करना ही पड़ेगा, छुट्टियां कैलकुलेट करता है। सरकारी नौकरी में आदमी क्यों चाहता है, ताकि काम चल होता है, वो काम नहीं करना चाहता है ना। 8 घंटे के ड्यूटी रहती है, मुश्किल 2 घंटे काम करता, 6 घंटा टाइम वेस्ट करता, चाय पीने के बहाने, पान खाने के बहाने, इसके बहाने उसके बहाने, दुनिया भर के बहाने, कोई ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता। अब बेचारे थोड़ा मोदी जी आ गए, थोड़ा टाइट से कुछ टाइट कर रहे, तो ये ब्यूरोक्रेट थोड़ा टाइम पे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ काम होना शुरू हो गया, यही स्थिति है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग खुद प्रचार करिए, क्योंकि यही समय है इस काम को, जब 50 साल में इस काम इतना फैल गया, तो आने वाले 50 साल में हम कितना फैल जाना चाहिए, हम लोग तो नहीं रहेंगे, है ना। 50वीं जनरेशन तो हम मना रहे हैं, लेकिन 100वीं जनरेशन हम लोग नहीं मनाएंगे, राइट, लेकिन आप पूरी यंग जनरेशन को मनाएंगे। यही प्रभुपाद चाहते हैं कि ज्ञान का सही तरीके से क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। तो देवी में, देवता में, भूतम समय क्या अंतर होता है, इस अंतर को आप लोग समझाएं कि इस हिंदुस्तान में इसकी बड़ी अज्ञानता है। इस कान के अलावा कोई ऐसा प्रचार नहीं कर रहा है, जितने भी साधु संत है, जटाधारी ये सब अपने अपना फल बढ़ाने के चक्कर में भगवान की बात को समझा नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये सत्य है। हम देख रहे हैं कितने लोगों से मिलते रहे, हम यही देख रहे हैं कि इस्कॉन के अलावा फिलॉसफी को कोई ढंग से प्रचार ही नहीं कर रहा। अब ये बात धीरे धीरे लोगों को समझा रहे कि हाँ, इस कहानी की संस्था है जो कि सही ढंग से प्रचार कर रही है। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि जो प्रभुपाद जी परपट में लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि हम कृष्ण भावना आंदोलन में हमें कृता गुरु के आदेश मात को पूरा करना होता है, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं हमारे न मांगने पर भी कृष्ण द्वारा पूरी हो जाएंगी। अगर हम गुरु और कृष्ण के प्रति के आदेश के अनुसार हम चलेंगे, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान पूरा करते हैं, वो जानते हैं उनको क्या करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी पूरा करेंगे, हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं ये सब पूरा करेंगे, बस हमें इनके आदेश में क्या करना, पालन करना चाहिए। एक प्रभुपाद चाहते हैं इन्हीं के आदेश के अनुसार, निर्देशों का अगर हम कार्य करेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें पूरी नहीं करेगी। लोग सोचते कि रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा, अरे आप इस काम ज्वाइन कर लीजिए, मिलेगा। फुल टाइम ज्वाइन करने में लोगों की नानी मरती है। हमारे इतने इतने बड़े मंदिर, भक्तों की बड़ी कमी है, शॉर्टेज है, लोग आनंद जानते हैं कि आनंद है, लेकिन फिर भी आनंद लेना नहीं चाहते, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि बाधाएं परिवार को, कल रात को 11 बजे मुझे फोन आया एक चैनल से, उसका कोई लड़का जो है, उसके रिलेटिव का, मौसी का लड़का कोई जो है, वो इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है। रात को 11 बजे मुझे फोन करता है ना, मीडिया वाले फोन करा है कि नाम बताया, तो आपका इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर लिया है, और हम चाहते हैं कि घर वाले जो है बहुत परेशान हैं, है ना, तो आप उनको समझा दीजिए, नमाज का समय दिया हूँ। होता क्या, यही बड़ी समस्या है कि आप अगर भक्त बनना चाहें तो अवरोध अपने परिवार के लिए शुरू कर देते हैं। क्यों, वो जानते हैं, वो माता पिता ही चाहते हैं कि हमारा बेटा मिठल्ला बैठा रहे कुछ करे, लेकिन मेरे आँख के सामने रहे, आँख के सामने चोरी करे, बदमाशी करे, दारू पे ना, सब कुकर्म करे, उन्हें मसूद है, लेकिन भक्त न बने, साधु न बने, भक्त न बने, भक्त बना मतलब बहुत खराब बात, जबकि सब सच्चा है भक्त बनना चाहिए। जब हम बैंकें, ये हमारे साथ ऐसी हुआ, ये रुक्मणी कृष्ण बहु जो यहाँ के प्रेजेंट है उनके साथ है, उनकी तो सारी बहनें हमारे पीछे पड़ गई थी कि वार भाई को आप लोग भक्त बना रहे, साधु बना रहे, उनके मम्मी है ना, सब लोग जब मेरा ट्रांसफर बड़े मंदिर गए तो वहां भी लोग पीछे पड़ गए थे हमारे गुरु महाराज के, लेकिन आज वही इनकी बहने सब चैंटिंग करते, सब तिर दीक्षा ले लिया, लेकिन शुरू शुरू में सब लड़ रहे थे। तो अज्ञानता जैसे जैसे दूर होती है, ज्ञान आता है तो आदमी धीरे धीरे क्या होता है, संभल जाता है। ये चीज है, आप भक्त बनेंगे तब आपको पता चले। आप भक्त बनकर के देखिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि भाई फुल टाइम भक्त बहुत जरूरी है। जैसे अगर जितने स्टूडेंट है ये सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो टीचर तो किसी को बनने पड़ेगा। हम तो आपको ब्राह्मण बनाएंगे, वैदिक ज्ञान शिक्षा दे कि आप जाके प्रचार करो, इसलिए बहुत जरूरी है। तो फुल टाइम भक्त की बहुत जरूरी है। हमारे प्रभु जी मुरली कृष्ण यंग बॉय, इनके पूरे परिवार को हमने जोड़ा। ये पूर्वम रहते किस तरह जोड़ा, आज देखो इनके माता पिता बड़ा खुश हैं, ये ब्रह्मचारी कोई टेंशन नहीं। ये आवश्यक है, ये सब ज्ञान प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया उसी उससे क्या लोग दूर हैं। आप देखिए सीता जी का एक प्रसंग सुनाएंगे, बहुत सुंदर। एक बार कहते हो भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। अगर उनके जो पार्षद होते जो उनके साथ रहते हैं और उनको अगर अहंकार होता है तो भगवान कैसे दूर करता है, एक स्टोरी से आप समझ जाएंगे। भगवान जब द्वारिका में थे, द्वारिका धीश के रूप में, तो उनके 16,108 रानियां थी, बड़ी जबरदस्त शादी की थी 16,108 रानियों के साथ। लेकिन जो तीन रानियां थी क्या थी, प्रमुख थी, रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती। ये वही जामवंती जो भगवान राम के साथ थे, उनकी बड़ी आयु थी जामवंती की। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भगवान से की थी जब भगवान ने पराजित किया था। तो एक बार क्या हुआ, सुदर्शन चक्र को थोड़ा अहंकार हो गया कि देखो मैंने दुर्वासा मुनि को भगा दिया, इतना बड़ा ऋषि मुनि है। अच्छा सुदर्शन चक्र पीछे बड़ा बेचारा भागे भागे गए, तो थोड़ा सा अहंकार उनको हो गया, सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया कि देखो हमने वज्र को, वज्र समझते ना, वज्र इंद्र का वज्र, क्योंकि भगवान तब पराजित किए जब भगवान पारिजात पुष्प लेने के गए थे, है ना। तो इंद्र जो अपने बस का पहाड़ के लाए भी भगवान ऐसे आसानी से फूल नहीं दे रहा था, अधिकारी वही था लेकिन भगवान से बढ़ गया। तो सुदर्शन से बज को पराजित किया, तो कहे तो कि मैंने बज को पराजित किया है ना, और दुर्वासा ऋषि को मैंने भगाया है ना, तो अहंकार से भगा। और एक दिन क्या हुआ कि सत्यभामा को जब भगवान ने पारिजात पुष्प लाए, किससे लेकर के, इंद्र से, स्वर्ग लोग में पारिजात पुष्प होता है उसकी बड़ी खासियत होती है, बहुत सुगंधित होता है और दिन में छोटा हो जाता है और रात में फैल जाता था। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि पहले रुक्मणी के लिए लाए थे तो उन्होंने फूल दिया था, तो पारिजात जब सत्यभामा ने रिक्वेस्ट किया तो भगवान कहें कि अब 16,108 रानियां हैं, है ना, हम ऐसा कर पेड़ ही लेके जाते हैं। तो पूरा एक वृक्ष ही ला करके और सत्यभामा के आंगन लगा दिया, ताकि जिसको जिसको फूल चाहिए अपना यहीं से लेते रहे, बार बार नहीं जाएंगे वहां पर। रिची लाकर रख दिया वहां पर, है ना। तो सत्यभामा बड़ी खुश, तो सत्यभामा एक बार ऐसे बैठी थी, है ना। तो सत्यभामा ने पूछा कि क्या सीता जी मुझसे ज्यादा सुंदर थे, जिनके लिए आप बनबल भटकते रहे, रो रहे थे जब रावण चुराक लगा था, इतना रोने की क्या जरूरत थी, है ना। इतना रोने की क्या जरूरत है, क्या हमसे ज्यादा सुंदर थे। आप ध्यान दीजिए, कृष्ण और राम में कोई, कृष्ण ही राम के रूप में आए थे, है ना। क्योंकि जिस रूप में जिस रूप की जब प्रति भगवान आ जाते हैं तो कृष्ण ही राम के रूप में आए थे, है ना। तो वही कर दे कि आप क्यों कहता है वो जो है, क्या सीता जी हमसे ज्यादा खूबसूरत थे, जो बनबन भटक रहे थे उनके लिए रो रहे थे। तो भगवान चुप हो गए, भगवान ने कहा, सोचा कि सत्यभामा को भी अपनी सुंदरता का थोड़ा क्रूर हो गया, अहंकार हो गया, जब सुदर्शन चक्र को क्रूर था, अब गांव भी अपने आप को कम नहीं समझ, उनको भी थोड़ा अहंकार हो गया कि मुझे ज्यादा ना कोई बलवान है और मुझे ज्यादा ना कोई तेज वाहन चलने वाला है। तब भगवान ने क्या किया, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को याद किया। अब हनुमान जी और कृष्ण मिल करके एक लीला की। हनुमान जी क्या किए द्वारिका, क्योंकि हर राजा अपने लिए गार्डन बगीचा बनाता था, राजाओं को टहलने घूमने का। जैसे महाराज जनक की बहुत बड़ी वाटिका, जनक वाटिका, सीता जी रोज जाती थी जनक फुलवारी में घूमने के लिए, पार्वती जी की पूजा करने के लिए। से हर राजा बनाता था, अशोक वाटिका रावण ने बनवाया था, है ना। तो भगवान द्वारिका में ही बहुत सुंदर बगीचा भगवान का बना हुआ था। तो बगीचे में हनुमान जी जो है एक बांदर के रूप में के खाने लगे, उजाने लगे, जैसे अशोक वाटिका उजाड़ी थी ऐसे खाने भी लगे और नुकसान भी करने लगे, है ना। तो जो रखवाले कुछ लोग थे दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास गए, क्योंकि बांदर आया पूरा वाटिका उजाड़ रहा है। तो गौण जी सामने बैठे थे, भगवान ने गौण जी से कहा कि आप सेना से जा करके उस बांदर को पकड़ के ले आओ। तो गौण जी को थोड़ा ठेस पहुंचा कि एक बांदर के लिए मैं सेना, अरे मैं खुद बलवान हूं, पहलवान हूं, है ना, अब सेना से कैसे गए, हमारा बड़ा अपमान कर दिया है ऐसा कर। तो कहे कि नहीं, मैं तो अकेला का भी हूं, कि जैसा भी हो जाकर बांदर को लेकर भगवान ने, अब गए अकेले ही गए। अब कहे कि बांट तुम क्यों ऐसा, तुमने मन बहस क्या, क्यों ऐसा तुम, कि भाई हम तो बांदर जाते हैं, हमारा काम है फल फूल खाना उखाड़ना, हमारा तो यही आहार है, हम लोग कोई रोटी बना थोड़ी खाते हैं, हम तो फल फूल है, हम तो फल फूल खाते हैं, रोटी बना के तो हम लोग खाते हैं, हम तुम्हारा तो यही है, हम बनचारी हैं, बन रहते हैं, बांदर हैं तो हम खाते हैं। कि नहीं, ये सब उजाड़ना बंद करो, क्योंकि तुम्हें हमारे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने बुलाया है। कि मैं राम कला में किसी को नहीं जानता है, ये आप अपने उसमें। कि नहीं चलना पड़ेगा, कि नहीं चलना पड़ा, थोड़ा सा भिड़ गए। भगवान हनुमान जी ने क्या किया, उनको पकड़ करके समुद्र में डाल दिया, द्वारिका इतना तेज उनको फेंका उस समुद्र जी करिए, अब पंखा उनका जो है भीग गया, पंकज सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा धमकी दर्द की, अब तुमने मैं गण के तुम जैसी चिड़िया मैंने बहुत देखी है, तुम जैसे चिड़िया मैंने बहुत देखी है। तो बेचारा अच्छा पंख भीज गया तो उड़ भी नहीं सकते थे, गए भगवान के पास है ना, कि कहीं हनुमान जी कहाँ है। तो बताया कि आप स्नान करके आ, तब उन्होंने बताया कि नहीं उनको उनको फेंक दिया, उनको फेंक करके हनुमान जी मलयागिर चले गए। तो उन्होंने कहा कि देखो जाओ उनसे कहो कि आपको भगवान राम ने बुलाया है, मेरा राम का नाम लो, क्योंकि राम ने बुलाया है। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी जाने की, भाई पराजित होकर फिर उनके पास जाओ, लेकिन भगवान की आज्ञा को भी नहीं कर सकते थे। गए कहे कि भग कि आप चले, भगवान राम ने आपको बुलाया है द्वारिका में। तो कहे ठीक है आप चले, मैं आता हूँ। उन्होंने क्या कहा, आप चलो मैं आता हूँ। अब जब गौ जी उड़े, हनुमान जी वहां पहले पहुंचे हुए थे, हनुमान जी वहां पहले पहुंचे। हनुमान जी जब पहुंचे वहां पे तो सुदर्शन चक्र की ड्यूटी भगवान लगा रखी थी, है ना, कि कोई बिना हमारे परमिशन आ नहीं सकता था, है ना। और सुदर्शन चक्र वहां पे चक्कर लगा रहा था। हनुमान जी गए, हनुमान जी कहे कि भाई मुझे भगवान से मिलना है, इनका दर्शन करना है। सुदर्शन चक्र कहा आप पहुंच जाइए सर। उन्होंने क्या पकड़ा सुदर्शन चक्र मुंह में डाल दिया। अरे जो सूर्य को निकलने की क्षमता रखता हो तो छोटा सा चक्र क्या करेगा। हनुमान जी है डाल लिया, है ना, सीधा चला गया। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने क्या किया, राम का दर्शन किया। जिस तरह से जब जामोन से लड़ाई हुई थी तो उसमें भी कृष्ण ने उनको क्या दिखाया था, अपना राम को रूप दिखाया, है ना, पहचान लिया। तो क्योंकि राम और कृष्ण अंत में भगवान कृष्ण ही राम रूप में आते हैं, तो भगवान तो प्रणाम किया। तो कहे कि अरे हनुमान जी आप डायरेक्ट कैसे आ गए, सुदर्शन चक्र तो ड्यूटी कर रहा था, आप अचानक कैसे आ गए, है ना। तो कहे वो आने नहीं दे रहा था। कहे कि सुदर्शन चक्र कहाँ है, तो मुंह से जरूर निकाल सुदर्शन चक्र खड़ा हो गया, वो बेचारा लज्जित हो गया, किससे पाला पड़ा। तो कहे हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपने साथ में दासी क्यों कैसे बैठा रखा सत्य भामा कहे कि जो सुंदरता हमारी सीता जी की है कि दासी तो नजर नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, तब सत्य भामा को समझा वास्तव में अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े, कोई भी रामायण पढ़े, सीता जी के जो सुंदरता को वर्णन किया गया है उसके कोई मुकाबला नहीं। आप जान सकते कोई मुकाबला नहीं। हनुमान जी ने क्या, अब सत्य भामा भी जो झेप गए तो भगवान ने क्या किया, एक लीला से तीनों का अहंकार क्या कर दिया, दूर कर दिया। सुदर्शन चक्र का भी, गुण जी का भी। अभी भी जब भगवान राम अयोध्या वापस आए है ना, सीता जी पूरा हनुमान जी के साथ पूरा टीम जो वापस आई वहां पे, तो अगस्त मुनि जो थे है ना, वशिष्ठ जी वगैरह सब बैठे दरबार में बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो बाली बहुत बलवान था, वास्तव में बाली बलवान था। अगर रावण किसी को मित्र बनाया है और किसी को वीर माना है तो किसको माना था, बाली। कि बाली ही 6 महीने दबा करके पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था रावण, अल्लाह ले 6 महीने बाद ले जाकर के अब पेड़ में बांध दिया। जब प्लस ध्वनि आए रिक्वेस्ट किए तब जाकर छोड़ा उसने। रावण कहे कि ऐसा बलवान तो मैंने देखा नहीं, ऐसे बलवान को भगवान ने एक तीर से मार दिया। सोचो बाली को, और भगवान जब बाली को मारा तो बाली में और भगवान राम थोड़ी बहस। बाली ने कहा कि मैंने तो आपके क्षेत्र में आज तक कभी गया नहीं, आपके पिताजी से तुम्हारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कभी अयोध्या में कोई अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमारी आप कोई दुश्मनी नहीं रही है ना, लेकिन फिर भी आप मुझे मारा। भगवान से उसने बड़ी अच्छी तर्क प्रेस है। तो भगवान ने कहा कि तुमने अपने भाई की स्त्री को भोगा है इसलिए तुम्हें मारा। फिर उसने बहस किया, फिर भगवान ने कहा कि मैंने तुमको इसलिए मारा कि तुम अपनी पत्नी स्त्री की बात नहीं सुना। जब जब तारा तुम्हारी स्त्री बता रही थी कि वो भगवान राम से मिले हुआ है सुप्रीम, इतना वो बता रही थी, तुम अपनी स्त्री की बात नहीं माना इसलिए मैं तुम्हें मारा। तो बाली बोलता है कि स्त्री की बात कभी सुनना चाहिए कभी नहीं भी सुनना चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी ने अपनी पत्नी कई कई की बात मान ली मर गए। बड़ा सुंदर तर्क दिया है, क्योंकि आपने अपनी पत्नी की बात मानी, सीता की माना कि जा सोने का मृग ले आओ, आपने बात मान ली, इधर उधर भटक रहे हैं। अगर आप दोनों स्त्रियों की बात नहीं मानी होती अपनी अपनी स्त्री की, ये दुर्दशा नहीं होती। तो स्त्री की बात कभी मानी चाहिए और कभी नहीं मानी चाहिए, विचार करना चाहिए। और आप लोग बोले मान ली, अधर तो फटक रहे, भगवान चुप हो गए। फिर भगवान बोलते हैं कि हमने तुम्हें इसलिए मारा कि तुमको मालूम था कि सुग्रीव मेरी शरण में आ गया है, और जिसके शरण में जो मेरी शरण में आ जाए है ना, ये तुम जानते हुए तुम अहंकार बस मेरे से युद्ध करने के लिए तुम आया, तुम उस अहंकार की वजह से मैं तुमको मारा। तुम मालूम था कि अगर मैं किसी को मारने के लिए आज मैं भगवान कोई मान के आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता, और मैं जिसको बचा कोई मार नहीं सकता। जब तुम्हें पता था कि सुप्रीम मेरी शरण में आ गया है ना, मैं उसकी सुरक्षा करूं, लेकिन ये जानता भी तुम आया इसलिए तुम्हें मारा। फिर चुप हो गया। यहीं पर जो है वो टूट गया कि भगवान वाक्पटु हैं, भगवान वाक्पटु हैं। जब इस तरह से बात बहस किया तब उसके जितने तर्क थे क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब तब अहंकार उसका खत्म हो गया, और जैसे ही अहंकार खत्म हो गया आप जान लीजिए एक प्रसंग सुन के, जैसे ही अहंकार खत्म हो गया उसके आंखों में आंसू आ गए और भगवान की शरण में आ गया कि हे प्रभु अब मैंने आपको पहचाना। और जैसे ही अहंकार खत्म हुआ प्रभु भगवान राम उसके सर पे हाथ रखने लगे और कहे कि बाली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन प्राण दे सकता। भगवान कितने भक्त वत्सल, जैसे ही अहंकार खत्म हुआ उसके अंदर विनम्रता आई है ना, भगवान तुरंत प्रभावित हो गए। तो भगवान को क्या पसंद है? विनम्रता। अगर आप विनम्र हैं तुरंत भगवान तो प्रभावित हो गए और कहा कि मैं तुम्हें डर। तब बारी कहता कि हे प्रभु कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी आपका ध्यान करते हैं कि अंत समय में उनके मुंह से आपका नाम आ जाए अपना उद्धार करेंगे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने आपकी गोदी में हम प्राण त्यागेंगे। इससे बड़ा सुख घड़ी भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी, तो हम इस अवसर को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं आपके धाम में ही जाना चाहता हूँ। कहता है बाली, इतना कहते हैं बाली क्या क्या अपना बेटा जो अंगद था उसका हाथ पकड़ा है कि मेरा बेटा है, मेरी तरह ही बुद्धिमान है बलवान है, आप इसकी सुरक्षा करें। यदि आप भगवान की प्राप्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? विनम्र। इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनमें 26 गुण होते हैं क्वालिटीज, उसमें सबसे स्थान होता है सरलता का और विनम्रता का। चैतन्य महाप्रभु का त्रिनाथ विश्व नीचे ना, अपने आप को नीचा तिनके से नीचा समझना चाहिए। जितना आप विनम्र होंगे उतने भगवान के करीब पहुंचेंगे। आप जान लीजिए भगवान को प्राप्त करने का बड़ी सरल तरीका। प्रभुपाद जी के प्रवचन सुना था, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण को पकड़ना बहुत आसान है। कि प्रभुपाद जी में हमारे इसमें है मोबाइल में है प्रभुपाद जी का एक लेक्चर, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण को पकड़ना बहुत आसान है अगर इंसान अपनी जीवा को कंट्रोल कर। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जीवा ही एक ऐसी इंद्रिय है कि अगर जीवा को लोग पूरी तरह से भगवान स्वयं लगा दें तो भगवान को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा और भगवान का हो जाएगा। कैसे? कि जीवा का काम है बोलना और जीवा का काम है स्वाद करना चखना। और लोग 24 घंटा जब सोते रहते ना उसके नाम बोलते ही रहते कुछ, अरे जब बोलो तो भगवान के बारे में बोलो। जीवा को भगवान में अगर लगा लिया, भगवान का नाम लेने में, कीर्तन करने में, कथा करने में, और जीवा भगवान के भोग लगाए बिना अगर आपने कहा कि जीवा अगर कंट्रोल हो गई तो प्रभुपाद जी कहते हैं सारी इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएंगी? कंट्रोल हो जाएंगी। और उस जीवा को, सिर्फ जीवा को अगर भगवान स्वयं लगा दीजिए तो आप भगवान को पकड़ सकते हैं। ये प्रभुपाद जी, इसलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि देखिए इस सीता महारानी का जो आज जन्मदिन है, सीता जी का जो संदेश है ना इसको पढ़े। सती अनुसुईया के यहाँ जब सीता जी जाती हैं तो सीता जी को अनुसुईया जी शिक्षा देने लगती हैं कि अपने पति के ही साथ रहना चाहिए, पति ही उसके लिए क्या है? परमेश्वर है। तो सीता जी कहती हैं कि हे अनुसुईया जी जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो तो मैंने जन्म से ही यही शिक्षा, क्योंकि जो मेरी माता, क्योंकि वो किसकी माता है? भूदेवी। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? महाराज जनक और उनकी पत्नी, जनक की पत्नी का नाम क्या था? सुनैना। तो सुनैना और महाराज जनक ये दोनों हल जोत रहे थे सोने का हल। राजा महाराजा ऐसा लकड़ी का थोड़ी हल चला सोने का हल, जो लोहा था वो सोने का, तो सोने का हल चला रहे थे। और उसी समय उनका जो कुछ सीत बोलते हैं लोहे का जो खोदता है ना जमीन को, वो फंस गया है ना। जब फंस गया तो लोग जब देखा कहाँ फंसा है तो एक बढ़िया संदूक था, बक्सा था उस वो मिला। जब बक्सा उन्होंने खोला तो सीता जी इसमें थी, तो सीता जी को इसलिए भूदेवी नाम दिया गया। डायरेक्ट पृथ्वी माता से उनकी उत्पत्ति है। और लेके आए, जब लेके आए वहां सेवा करने लगे तो उनकी सुंदरता इतना था कि जिस कमरे में बैठ जाते थे वहां पर किसी रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना तेज था, बहुत सुंदर। और बड़े दिन प्रतिदिन जैसे ही 16 साल में जवान हुए उनकी सुंदरता पूरे फैल गया, पूरे दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा सब जो है होने लगे। और खेल खेल में एक वैष्णव धनुष, बहुत विशाल धनुष वहां रखी थी, परशुराम जी ने दिया था। और उस धनुष को जब छोटी सी थी ना तभी वो ऐसे खेलती थी धनुष के साथ जैसे कोई लड़की खिलौना खेलती है, इतनी ताकत के स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के अर्थात इटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्ण कि वो है। तो तभी महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की जब हमारी बेटी जो है इस धन के साथ खेल सकती है, जिसका जो पति होना चाहिए वो तो बहुत बहादुर होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हम क्या करेंगे, विवाह करें। और सुंदरता इतनी फैल गई थी कि रावण बाणा से बड़े बड़े बलवान, रावण भी आया था है ना, जितने पूरे विश्व के जितने राजा थे है ना, हर प्रकार के राजा दुष्ट, क्योंकि सीता जी कितनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता में सीता जी के साथ शादी करना सब चाहता था है ना, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा थी कि तोड़ नहीं सकते, कोई हिला भी नहीं सका है ना। एकमात्र कौन हिलाए, भगवान राम। वास्तव में भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि राम जब गए हैं तो एक दृश्य हम आपको सुना देते हैं कि जैसे ही पूरा दरबार भरा हुआ था, राजा महाराजा सब लोग डटे हुए थे और परशुराम अपने क्षेत्र में थे, विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण जी और भगवान राम सभा में प्रवेश किए, पहले से सभा लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही राम और लक्ष्मण है ना प्रवेश करते हैं सबकी नजर भगवान पर पड़ जाती है। अब भगवान भी कम सुंदर नहीं है, भगवान श्री राम की सुंदरता तो इतना वर्णन किया गया है कि भगवान राम जब वन से गुजर रहे थे हम तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सुंदरता से कोमलता से प्रभावित हो जाते थे, कई अगर भगवान मिल जाते तो मैं आलिंगन कर लेता, स्त्रियों की तो बात ही छोड़ दे, ऋषि मुनि का मन डोल जाता था, भगवान इतने सुंदर इतनी चितवन इतना उनका चलने का ढंग स्टाइलिश पर्सनैलिटी, क्या कृष्ण ही है तो कृष्ण ही है। अब एक मनुष्य मनुष्य के रूप में होता है, राम के रूप के हैं लेकिन इसे सुंदरता कोई मुकाबला नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि हम द्वापर युग में कृष्णा अवतार में आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे, वही साधु ऋषि मुनि क्या बने, गोपी बने है। और महाराज में भगवान ने इच्छा पूरी की, ऐसा ही लीला था। जामोन जब पूरा युद्ध खत्म कर रावण भी मारा गया, भगवान राजा बन गए, तब जामोन ने कहा कि हे प्रभु मेरे बल, क्योंकि बहुत बलवान थी और कहा कि मेरा तो आधा ही बल यूज हुआ इतना बड़ा युद्ध हो गया मेरा बल अभी भी बाकी रह गया। तो भगवान को लगा इनको अपने बल का अहंकार अभी भी ले गया। जामुन से कहा कि द्वापर युग में जब हम कृष्ण हम जब स्वयं आएंगे तब आपका बल का तो हमसे लेंगे। तो इसीलिए लड़ाई थी, पूरा 6 महीने लगातार डे नाइट युद्ध हुआ था जामुन से, जामुन बलवान थे और कृष्ण भी खूब लड़े। अब बाद में जो है जामुन हारने लगे, जब हार के भगवान उनके छाती में अपना घुटना टेक दिया तो उनको तारे नजर आने लगे जाल का, प्रभु अब आप हमें अपना रूप दिखा दीजिए राम का वो समझ गए। फिर भगवान कृष्ण उनको जो है अपना राम का रूप दिखाते हैं है ना, अतः तो वो जो भगवान को प्रणाम करते हैं। जामुनती उनकी जो बेटी थी बड़ी खूबसूरत थी और खड़ी थी उनके साथ है ना, जब जब पिताजी गिरे थे भगवान ऊपर छाती में घुटना टेक दिया था तब जामुन ने कहा कि अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में, एक शादी और हो गई। इस तरह से पूरी ये लीला है। तो भगवान राम ने ही क्या किए, जब धनुष के पास भगवान पहुंचे तो जितने राजा महाराजा थे सब पूरा शांत, सभी सोच रहे थे कि इतना बड़े बड़े लोग जब नहीं तोड़ पाए है ना, ये लड़का कैसे तोड़ेगा, क्योंकि भगवान देखने को बड़े सुंदर सुकोमल है ना। सीता जी की हालत खराब थी, कहे कि जितनी तपस्या की थी सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि यही तोड़े यही तोड़े है ना, सब होता है। लेकिन भगवान क्या किया, एक नजर सब पर रखे, जैसे आप लोग सब बैठे, एक नजर सब। उस समय जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में नजर आए। और जैसे भगवान की नजर सीता जी पे जाकर टिकी, तो भगवान सोच रहे थे कि अगर हमने थोड़ा सा देरी कर दी तो सीता जी प्राण न त्यागती। तब वह एक चौपाई आती है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, है एक कहावत है ना कि जब कृषि सूख जाएगी तो बरसने से कोई फायदा नहीं। भाई सीता जी के लिए तो धनुष है, और धनुष तोड़ेंगे हम देर कर दें और सीता जी ने उसके पहले शरीर त्याग दिया तो धनुष तोड़ने से कोई फायदा नहीं। धनुष तोड़ा इसी के लिए कि सीता जी को पाना है ना। तो इसलिए सीता जी की जब स्थिति दिखी भगवान ने, तब भगवान ने क्या किया, वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर उनके, तब भगवान ने क्या किया, तुरंत जो है एक सेकंड, लोगों ने देखा नहीं कितनी जल्दी भगवान उठा लिए और प्रत्यंजा चढ़ा दी, टूट गई। जब टूट गई, जब आवाज आई, तब लोग देखे समझ पाए कि धनुष तो टूट ही गई। इतनी तेजी से भगवान, तो भगवान जो भी कार्य करते हैं ना दिव्य होता है, ट्रांसजेंडर। सीता जी को देखते ही उन्होंने पूरा सब तोड़ दिया, और उसके बाद सीता जी जयमाला लेकर के आ गई सखियों के साथ, गीत गाते हैं। जैसे जब शादी होती है ना गीत नहीं आते, जब लड़की आती तो गीत शुरू हो जाता कैसे, है ना। तो उसमें कैसे चलता नहीं था, तो जो सखियाँ थी वही जो सखियाँ थी वही गीत गा करके आती हैं। तो भगवान राम और के सामने खड़ी हो जाती है सीता जी, है ना। फिर अब पहनाना चाहती हैं, है ना, लेकिन भगवान इस तरह तन के खड़े हैं। तब गीत गाती हैं सखियाँ कि झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, कि हे भगवान राम अब थोड़ा सा सर ऐसे झुका झुक जाइए, है ना, क्योंकि हमारी जो सखी है थोड़ी छोटी सी है, है ना, पहुंच नहीं पा रही है, है। तब भगवान थोड़ा ऐसे करते हैं, फिर जयमाला जो है गाते हैं। अब पूरे देवी देवता सब प्रसन्न, देवता लोग हमेशा फूल लेके तैयार होते थे। भगवान जो कोई काम करते थे, किसी राक्षस को मारा इसको मारा, तुरंत कुछ बरसात लगाने में जाते थे, ऐसे उस समय। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है कि आज सीता जी का जन्मदिन। पर 5 मिनट और लेते हैं कि मधु पंडित का दिन है, बस 5 मिनट और लेंगे आपसे कि बहुत छोटा है इनके बारे में। श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्चा बिरगे की स्थापना की थी। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र, उनका नाम था बजनाभ। तो लगभग 5 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के वंशी वट तट की भूमि को खोद कर इस विग्रह को खोल निकाला। गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित, जिनका आज जन्म हुआ है, तो एक गदाधर पंडित के शिष्य थे, अर्थात गुरु थे गदाधर पंडित। मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। तो भक्ति रत्नाकर कथा अनुसार करुणा उर्वालय श्री गोपीनाथ जी सरदा यमुना के रमणीक वंशी तट पर क्रीड़ामग्न रहते हैं। उनकी अंगकांति प्रत्येक दर्शक का हृदय हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की शासक मधुरमा मन में प्रविष्ट होती है, वह तत्क्षण भौतिक असुर की धरती ही ज्वाला को शांत कर देती है। संप्रति मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित है। तो जो गोपीनाथ जी का मंदिर है जयपुर में, वो वही मूल है जो कि वृंदावन से वहां चली गई थी। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ जी की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपक लता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार पर अभी भी है। और आज नित्यानंद प्रभु की जो धर्म पत्नी है जानी माता, आज उनका भी जन्मदिन है, उनके बारे में समझे। नित्यानंद की 2 पत्नियां थी, श्री वसुधा और श्री जानवा देवी। तो आज जानवा देवी का जन्मदिन है। तो भगवान बलराम की नित्य प्रेषियों वारुणी और रेती की विस्तार स्वरूप है। तो जो जानवा देवी माता जी है और रेती जो बलराम जी की पत्नियों करती है, उन्हीं की ओर विस्तार है। तो पंच तथा चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों को तिरुधान के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुड़ में एक विशाल संगीत उत्सव हुआ था, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद जी, श्रीनिवास, वृंदावन दास ठाकुर, मुरारी चेतन, परमेश्वर एवं मिनी केतन राम ने प्रथम केतुड़ संकीर्तन महोत्सव भाग लिया था। तो कहने का मतलब कि जब ये संकीर्तन आंदोलन होता था, जितने भक्त नाचते थे, कीर्तन करते थे, सबकी प्रसाद व्यवस्था कौन करती थी? जानवी माता जी। इनका इतने लोगों को प्रसाद बनाना, भोग बनाना, भोग लगाना, खिलाना आसान काम नहीं था। तो जानवी माता जी जहाँ जहाँ ये कीर्तन सब होता था, वो वहाँ पे आकर के इकार करते थे। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर लिखा है, उनके बारे में प्रार्थना लिखी है, उसने कि हे जानवा देवी, इस दास पर कृपा कीजिए, अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्टप्रद स्थिति से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़तापूर्वक आपके चरण कमल नाव के स्वागत होकर के इस भवसागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद की शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं, अब आप इस दास को अपने कल्पतर रूप पद कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पामरों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा आसना करते हुए यह तुच्छ पाद की आपके पांव चरण में प्रार्थना। तो बताया गया है कि आज के दिन हम सब भक्तों को सीता जी से, जानवी माता जी से सबसे ही प्रार्थना करना चाहिए कि आप भी हमें भक्ति दीजिए। जिस तरह सीता जी भगवान के चरण कमल में सदैव विराजमान रहती हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं, जिस तरह श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, उसी पर जानवी माता जी नित्यानंद की सेवा में लगी रहती हैं। ये सब हमारे पर कृपा करें ताकि हम भी प्रभु के चरण कमल में सेवारत रहें। हरे कृष्ण। आज मैंने परमिशन लिया थोड़ा सी 10-15 मिनट ज्यादा लेंगे क्योंकि बहुत कथा इतनी आने लगती है कि क्या सुनाए क्या ना सुनाए। अब 45 मिनट 50 मिनट में कुछ होता नहीं, भगवान की लीला इतनी है। जब राम कथा होने लगे तो कहानी अपने आप आने लगती है। आप लोग सब सीता जी की कृपा आप पर बारिश हो, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, सीता महारानी की, जानवी देवी दास जानवी माता जी की, मत पंडित की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय।